नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। श्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल की सेना का गाजा शहर में हमला जारी, पिछले 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। और बीसीसीआई ने एशिया कप के दौरान अनुचित गतिविधियों को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहेबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये व्यवधान देश को विचलित नहीं करते, बल्कि इन परिस्थितियों से नई दिशा और अवसर मिलते हैं।
दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है, और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत।
श्री मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसका लक्ष्य चिप से शिप बनाने तक का है।
हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है।
श्री मोदी ने कहा कि रूस के सहयोग से स्थापित एक कारखाने में जल्दी AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक रक्षा गलियारा विकसित किया जा रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों का निर्माण शुरू हो चुका है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने उद्योगों, व्यापारियों और नागरिकों के साथ सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की प्रतिबद्धता से खड़ा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाएंगे, कर विवादों को कम करेंगे और एमएसएमई के लिए रिफंड में तेजी लाएंगे, जिससे हर क्षेत्र को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2,200 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।
2,200 से अधिक एग्जीबिटर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि ऐतिहासिक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद ये प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 700 मेगावाट क्षमता के 4 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिससे प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह देश में सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। श्री मोदी आज हरित ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इस वैश्विक खाद्य आयोजन में 21 से अधिक देशों, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 10 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हितधारकों का ये सबसे बड़ा सम्मेलन है।
प्रधानमंत्री संस्करण क्षेत्र की सूचना परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता प्रदान की जाएगी। इस आयोजन के दौरान सीईओ गोलमेज सम्मेलन, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियों सहित कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 14 पवेलियन में इस वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1,00,000 आगंतुकों के आने की उम्मीद है। रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में फिशटेक पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि भारत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मछली निर्यात के साथ दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े देशों में से एक है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग 22 सितंबर से लागू जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की पूर्व की 4-स्तरीय संरचना को 5% और 18% की द्विस्तरीय संरचना में बदल दिया है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम होने से नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। एक रिपोर्ट।
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। टैक्स में कमी से पेंटिंग, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी से बने सामान और मिट्टी तथा टेराकोटा से बने बर्तन सस्ते हुए हैं, जिसका लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। इसी प्रकार कॉटन और जूट से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग पर भी टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इन वस्तुओं की खरीदारी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी ढांचे में हुए सुधारों पर बात करते हुए व्यापार विशेषज्ञ दिलीप बैद ने कहा कि हस्तशिल्प पर जीएसटी दर में कमी से भारतीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारों के मौसम में हस्तशिल्प क्षेत्र में सुधार से जहां ग्राहकों को फायदा मिल रहा है, वहीं इस क्षेत्र के कारीगरों की भी आजीविका बेहतर हुई है। दृष्टि पुनियानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राय मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। उन्नत सुविधाओं से लैस अगली पीढ़ी की इस मिसाइल की मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है जिसे विशेष रूप से निर्मित रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। इससे उपयोगकर्ता को कम दृश्यता और कम समय में प्रक्षेपण करने की सुविधा मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसरो, सामरिक बल कमान और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कनिस्टराइज प्रक्षेपण प्रणालियां विकसित करने की क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन के एक दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मथुरा और वृंदावन में धार्मिक स्थलों पर दर्शन और पूजा करेंगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में शांति बनाए रखने के लिए सॉफ्ट पावर जैसी कूटनीति महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय दूसरे युवा लेखक सम्मेलन का आज उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अनुभव साझा करने, एक दूसरे के विचारों को समझने और लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए रचनात्मक मंच से बेहतर कोई और मंच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने घोषणा की कि यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को मजबूत किया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना है और वैश्विक रक्षा बाजार में वो एक उभरती हुई शक्ति बन गया है।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की ताकत देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते। पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता बिना रुकावट बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। रक्षा उद्योग के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार में बढ़ती सुगमता और स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने से साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणनीतिक नीतियों और स्वदेशी नवाचारों से प्रेरित रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। बढ़ते निर्यात और मेक इन इंडिया जैसी पहल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में प्रमुख क्षमता बनने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
सेवा पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत चौथा एपिसोड मिट्टी से सफलता तक खेतों और किसानों का सुदृढ़ीकरण आज दोपहर 3:10 से 100.1 MHz FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांति के रूप में देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है वो अद्भुत है। आज मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया पहल भारत के विकास को गति देने और हमारे देश की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम आज अपने नियमित समय शाम 6:30 के स्थान पर रात 8:10 से 8:30 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। इसराइल का गाजा पर हमला जारी है। गाजा पट्टी में कल एक इसराइली हमले में 80 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। यह हमला गाजा के दूरदराज इलाके में एक इमारत और शिविरों पर किया गया जिनमें विस्थापित परिवार रह रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 21 सितंबर को एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अनुचित व्यवहार के लिए उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय टीम ने इस दुर्व्यवहार के लिए दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। श्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल की सेना का गाजा शहर पर हमला जारी। पिछले 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। और बीसीसीआई ने एशिया कप के दौरान अनुचित गतिविधियों को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।